ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। उसका एवं निश्चय ही मैं मेरा अगस्त्य पापी का परा दिव्य अवर संसारी ईश नियंता भगवान व्यासक्त अत्यधिक आसक्त चित्तस्य मन का ग्रहेशु घरेलू मामलों में अविक्षण सदैव निर्वेद मूल वैराग्य का कारण विज शाप ब्राह्मण द्वारा दिया गया शाप रूप के रूप में यत्र जहां प्रसक्त प्रभावित भयं भय आशु शीघ्र धरते घटित होते अनुवाद तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर दूं। महाराज परीक्षित यद्यपि परम भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए दिव्य आसक्ति की शिक्षा प्राप्त थी, तो भी उन्हें सांसारिक गृहस्थ जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें भगवान की योजना द्वारा विलग किया जाना पड़ा। भगवान विशिष्ट भक्त के लिए ही ऐसी प्रत्यक्ष कार्यवाही करते हैं। महाराज परीक्षित संसार भर में संसार भर से आए श्रेष्ठ अध्यात्मवादियों की उपस्थिति में इसे समझ सके। भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं, अतएव बड़े बड़े संतों की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति का सूचक थी। अतएव राजा ने महर्षियों के आगमन की परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मानकर उनका स्वागत किया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणलविता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्णकरा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभांसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तस्येव मे अघस्य परावरेषु व्यासक्त चित्तस्य ग्रहेष्व भिक्षण निर्वेद मूलो द्विजशाप रूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु दत्ते। आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक जगतों के नियंता भगवान है, ब्राह्मण शाप के रूप में उस पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। भगवान के विशुद्ध भक्त और भगवान दोनों का एक ही स्तर होता है जो अध्यात्म का होता है। हमारे समक्ष यदि भौतिक जगत में वो आते हैं और हमारे जैसे ही कार्यवाही करने के लिए हमें उनको अपने में से एक मानने का भी प्रेरित करते हैं, लेकिन निर्वेद मूलम यानी कि किसी भी भौतिक वस्तुओं के नियंत्रित उपभोग वाली जो वेदों की सूचना, इनमें से भी अनासक्त होना यानी कि इनसे छूटना निर्वेद मूलम का, कि वेदों की अटपटी भाषाओं से भी छूटना। लोग पढ़े लिखे होते हैं तो अपनी पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा अभिमान करते हैं, वेद यानी जानकारी का अभिमान बहुत होता है, मेरे अलावा कोई जानता है नहीं, मैं सब कुछ जानू। लेकिन इनको भी निर्वेद मूलम बनना होता है, अनासक्त भाव। जब तक जिंदे हैं तो अनासक्ति भी होनी ही चाहिए। अनासक्तस्य विषयान् विषयों के प्रति अनासक्त तो पहले ही रहना चाहिए, चाहे अपने पास हो लेकिन जैसे ही हमने भावना की है कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करेंगे तो उपयोग नहीं उपभोग है और दुरुपयोग कहते हैं। सदुपयोग नहीं, सत यानी कि सनातन अवस्था तो निर्वेद मूलम द्वारा ही प्राप्त होती है। तो भक्त, एक विशुद्ध भक्त ये जानता है, विशुद्ध भक्त अनाशक्त भाव से काम करता है, किसी की बाबत का कोई लगाव नहीं। अनाशक्तस्य विषयात् योगम उपयुज, यथा अर्हम उपयुज, यथा जिस हेतु के लिए उसका उपयोग करना चाहिए वह भगवान की सेवा के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए ये यथा अर्हम का मतलब बताते हैं कि निर्बंधे हमारे बंधन का कारण नहीं, लेकिन कृष्ण संबंध है, संबंध बंधन है, लेकिन भगवान को बंधन में डालो, भगवान की प्रकृति है, भगवान को हमें निर्बंध होना है लेकिन भगवान के संबंध में। रिलेशनशिप अंग्रेजी में संबंध, ये बंधन है लेकिन भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है नित्य, वो तो निर्वेद मूलम होकर ही स्थापित होता है। तो अनासक्तस्य विषयान् यथा अर्हम उपयुञ्जत, उपयुञ्जत उपयोग में, यथा जिस हेतु के तो निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते, कृष्ण संबंध में ही हम ये सारी चीजों का उपयोग करके हम युक्त वैरागी बन सकते हैं। वैरागी होना हर एक का निजी लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि इस जगत के हम पैदाश ही नहीं है, आत्मा तो यहां आसक्ति लगा से फायदा क्या है? गैर फायदा ही पे गैर फायदा, गैर फायदा को फायदा कहने वाले पागल नहीं तो उनको नहीं तो इतना जानते हुए भी यदि आसक्ति नहीं छूटती है तो वेदों का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन ये वेदों तो प्रपंच वाले, प्रपंच प्र यानी सबसे आगे पांच जो भौतिक कारणों हैं हमारे शरीर पैदा करने का, वो तो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तो प्रपंच यानी कि कपट, कपट प्रपंच यानी कपट। आत्मा के साथ प्रपंच हमेशा धोखा देते हैं और आत्मा जब तक अभूत देता है तब तक वो प्रपंच उसे सताते रहे। तो प्रपंच की तया बुद्धया, यदि हमारी बुद्धि ही प्रपंच में पड़ी है तो हरि संबंधी न वस्तु, भगवान के संबंध में हम ये वस्तुओं का उपयोग नहीं करते, खुद के लिए और बाहर दिखावा करते हैं। क्या हम बड़े वैरागी हैं, नाम वैरागी धारण कर देते हैं, ये वैरागी वो वैरागी, लेकिन रागी है वैरागी नहीं, क्योंकि वो जानता नहीं प्रपंच बुद्धि से कोई वैरागी बन ही नहीं सकता। जब तक प्रपंच की बुद्धि हटी नहीं वो तो भगवान के संबंध में ही उपयोग करते, नहीं तो ये तो भगवान के संबंध में कोई लाना ही नहीं चाहता, भगवान की शक्ति को, भगवान के ये सारी जो प्रकृति की पैदाश है जो जो हम उपयोग करना है उनको बहुत करना चाहते हैं, लेकिन उसका हमेशा दुरुपयोग ही होगा। ये हमारे लिए नहीं दी गई, हमें तो यहां से निकलने के लिए ये बनाई गई है। ऐसा मानना एक विशुद्ध भक्त का स्थिति का दर्शन कराना, उसकी आध्यात्मिक स्थिति का दर्शन कराना। तो जब परीक्षित महाराज को यह सूचना मिली कि ब्राह्मण द्वारा श्राप दिया गया कि 7 दिन में तक्षक आकर उसे काट दिया गया, तो उन्होंने तुरंत निश्चय कर दिया, राजपाट सब अपने बेटे को दे दिया जन्मेजय को, और सादा वस्त्र धारण करके गंगा के तट पर कृत निश्चय बनकर बैठ गए प्रपंचों से छूटने, क्योंकि वो तो विष्णु राज भगवान विष्णु द्वारा इसकी रक्षा हुई है, वो विष्णु राज। तो स्वाभाविक रूप से उनकी आत्मा की स्थिति वो जानते हैं, वो बनाने का मौका अभी स्पष्ट हो गया तो क्यों ना बैठ जाए। तो ऐसा मनोबल ऐसी धारणा में भी कितनी शक्ति है, जैसे ही लोगों ने जाना कि ये विष्णुराज ने इन प्रपंचों से भी दूर होने का निश्चय कर दिया और शेष जीवन जो है 7 दिन का वो भगवान की आसक्ति में लगा, भगवान के प्रति आसक्ति। तो जब साधु संत इन निर्णय को जान गए तो चारों दिशाओं से बड़े बड़े महर्षि लोग आने लगे, और परीक्षित महाराज ने सबका आदर सत्कार किया। और इनके निर्णय की साधु वादना भी होने लगी, ये शिवनियों भी अरे बड़े बड़े दुरंधर मुनि हो रहे हैं, स्वयं व्यास देव पधार रहे हैं। लेकिन यहां हमें ये स्पष्ट होता है कि ऐसे निर्णय में, शुद्ध भक्त के निर्णय में भगवान की उपस्थिति नजर आनी चाहिए। जब शुद्ध भक्त के निर्णय में भगवान मौजूद है, इनका ख्याल बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी, भी आए, जो भगवत भक्त थे वही आए, अन्य नहीं आए। तो उनके लिए भी ये शब्द का प्रयोग हुआ है। अरुणादयश्च, अरुणादयश्च श्लोक संख्या 11 में बताया गया है कि राजर्षियों की विशिष्ट श्रेणी है, राजर्षियों की भी विशिष्ट श्रेणी है जो अरुणादय, यानी कि अपने अपने भौतिक उनका जो स्तर था राजाओं का वो तो होगा, लेकिन ये बड़े बड़े राजर्षि हैं और राजर्षि कृतनिश्चयी होते हैं, कृतनिश्चयी। अरुण यानी तो सूर्य, यानी कि ये अवश्य सूर्यवंशी राजा होंगे जो भगवत भक्त हो सकते हैं, क्योंकि भगवान ने प्रथम ये दिव्य ज्ञान तो सूर्यदेव को कहा था ना, एवं विवस्वते मनव प्रोक्त वाहन अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोदीक्षा कवे अभी एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः राजर्षय। तो राजर्षि ये सब आए हैं सूर्य वंश। तो अरुणादयश्च ये सभी अरुणादय कहलाते हैं जो जीवन का लक्ष्य जानते हैं, अपनी प्रजा को इस लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए तत्पर। तो ऐसा मौका वो भी क्यों छोड़ेंगे कि परीक्षित महाराज सर्वश्रेष्ठ विष्णुराज है, इतना सारा राजपाट होते हुए चाहते तो वो ये ब्राह्मण के श्राप को वो हटा सकते थे, लेकिन कृतनिश्चय बनकर वो भगवान के चित्त में चित्त लगाने के लिए सब चीजों से अनासक्त होकर गंगा के तट पर आए। तो ये निर्णय में भगवान का की उपस्थिति देखना है। अब देखो जब राजाओं इत्यादि सभी का स्वागत करते हैं, तो कल के श्लोक में ये आया कि परीक्षित महाराज उनकी बहु वादन करते हैं और कहते हैं कि आप जैसे महात्मा यहां उपस्थित हुए ये तो मेरा बड़ा धनभाग्य है, क्योंकि आप जैसे महात्माओं राजाओं को तुच्छ कचड़े के समान समझते हैं। राजाओं जो राज्य करते हैं अपने प्रजा के पास टैक्स इत्यादि लेते हैं और हुकूमत चलाते रहते हैं, तो राजा होना तो एक भक्त के साथ कोई निस्बत नहीं हो सकती। चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरित्र द्वारा प्रताप रुद्र राजा की भी इसी ढंग से ही परीक्षा की थी कि कितना विरक्त है और होना चाहता है, उस पर ही साधु संत इनको स्वीकारते हैं, नहीं तो नहीं स्वीकार। हमें इनके पास जाने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि तो विषय भोगी होते हैं, इतनी सारी समृद्धि में जो पलने वाला होता है वो क्या भक्त हो सकता है। सर्वप्रथम वहां ही प्रश्न होना चाहिए। राजाओं में विरक्ति लाना तो बहुत मुश्किल, इसीलिए परीक्षित महाराज कोई टोना नहीं मारते, सर्वप्रथम सत्य कह देते हैं कि हम जैसे राजाओं को तो आप कचड़ा मानते हैं, तुच्छ जीवन में हम लोग जी रहे हैं और स्वयं को पापी कह रहे हैं। अगम, अगम यानी पाप, मैं अगस्त्य मैं पापी हूं, एक छोटी सी गलती को भी बड़ा पाप मान देता है, इतनी आत्मा की जागृति से वो प्रायश्चित करता, लेकिन ये प्रायश्चित खुद की दुर्दशा होगी इसलिए नहीं करता, ये प्रायश्चित मैं वो स्वीकार कि नहीं अब मेरा मूल कर्तव्य भगवत धाम पहुंचना, उसके अलावा नहीं कुछ। तो स्वाभाविक रूप से इनका जो कृतनिश्चय है तो इन इन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये जानबूझकर कहते हैं, वो अपने आप को बाहरी रूप से निचतम नहीं बताते, लेकिन वास्तविक रूप से ये स्पष्टता कर देते हैं जो स्वयं के हित में भी होती है और दूसरों को भी उदाहरण के रूप में बन जाती है। क्योंकि बड़े बड़े राजा भी यदि अपने आप को तुच्छ मानते हैं तो हम छोटे आदमियों की भी बात ही तृणादपि सुनीचे। ये कोई विरोधाभास नहीं, लेकिन ये परीक्षित महाराज की आंतरिक स्थिति बताता है जो भगवान के साथ कितनी तादात्म्यता वाली होनी चाहिए। इस श्लोक में वो अपने आप को विरक्त करने की भावना रखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो भी कहेंगे कि भगवान ने ये जानबूझ कर दिया, मेरे पर कृपा की, ऐसा बड़ा अनुग्रह भगवान एक झटके में भी करते हैं या धीरे धीरे भी करते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्य तद्धनम शनै, धीरे 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 भी करता हूं, लेकिन ऐसे विशुद्ध भक्त को लेकर एक झटके में भी कर सकते हैं। तो भक्त क्या उसका अवरोध करेंगे, अरे भगवान आप जरा धीरे धीरे करते तो तुरंत। विशुद्ध भक्तों को तो किसी न किसी बहाने भगवान की उपस्थिति की तुरंत झलक मिल जाती है। खटवांग महाराज को एक क्षण में मिल गई थी कि देवताओं ने वरदान के लिए पूछा, तो वरदान में ये मांगा कि मेरी मृत्यु कब आ गई, क्योंकि एक क्षण तो तुरंत एक क्षण काफी थी भगवत भावना में जुड़ जाने के, क्योंकि जिंदगी ही सारी विरक्त भावना से दूसरों को मदद करने में जाती है, तो अंतकाल में वो विरक्ति बनी रहेगी। ये तो देवता है, तो भगवत भक्त है, तो भक्ति का कर्तव्य, राजा के स्तब्ध किया था और ये सारे देवता बहुत खुश हो गए और वरदान मांगने को कहा तो कह रहे मैं यही जानना चाहता हूं मेरी मृत्यु कब आएगी, कि भैया एक क्षण बात की काफी। कहने का मतलब है कि विरक्ति के लिए जो सिद्धांत यहां बताया जाता है उसकी सराहना भक्त लोग कर सकते हैं। ये कोई बहुत एक्सट्रीम केस नहीं, सिद्धांत कभी एक्सट्रीम नहीं है, सिद्धांत तो सत्य का ही प्रतिपादन करता है, सिद्धियों का अंत है परफेक्शन, सम टोटल ऑफ परफेक्शन जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, सारी स्थितियों का अंत को सिद्धांत कहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जबरदस्ती से ये कोई माने मनाने की बात नहीं है, सांसारिक गृहस्थ जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था परीक्षित महाराज को कि ये जो भगवान ने योजना बनाई है कि ये श्रृंगी के द्वारा उनको श्राप मिल रहा है। पहले अध्याय में ही हम जब परीक्षित महाराज समीप ऋषि के गले में मरा हुआ सांप की माला पहनाते हैं, वो कृत्य इतना पाप कृत्य तो था ही नहीं, जो ये श्राप का कारण बन जाए। और परीक्षित महाराज वहां से इतना करके चले गए, बाद में इतना पश्चाताप या उनकी माफी मांगना इत्यादि भी कोई कर्तव्य नहीं, क्योंकि जो विष्णुराज होता है तो हमेशा भगवान के ख्यालों में, इनकी भावनाओं में जुड़ा रहता है। इसीलिए ये सांप का, मरा हुआ सांप का की माला पहनाना भी भगवान की उपस्थिति में है। भगवान होते हैं यानी कि भगवान के आदेशानुसार ही ऐसा कर दिया, ऐसी हमें समझ आती है। तो सांसारिक आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें भगवान की योजना द्वारा विलग किया जाना पड़ा। बाहरी दृष्टि से तो ये देखते हैं कि देखो परीक्षित महाराज पर जबरदस्ती आ गई, बाहर से यू देखे। यदि जबरदस्ती है लेकिन परीक्षित महाराज की तैयारी कितनी है? यदि जिसकी तैयारी होती है, परीक्षा आने वाली है, बच्चे लोग इतना पढ़ते हैं दुम दबा कर गोलियां खाकर भी नींद ना आए ऐसी, और पढ़ते ही जाते हैं पढ़ते ही जाते हैं, तो क्या परीक्षा आने वाली है इसीलिए तो तैयारी कर रहे हैं? परीक्षा एकाएक थोड़ी आ जाती है। तैयारी तो सबको करनी पड़ती है। वैसे ही बिना पढ़े लिखे परीक्षा में बैठने जाए तो क्या होगा? वो जबरदस्ती कहलानी चाहिए। ये 7 दिन की मोहला कोई जबरदस्ती थोड़ी है। लेकिन संसारिक लोग तो कहते हैं ओ बेचारे को 7 दिन ही मिले, हमारे दफ्तर तो 4-5 साल और बढ़ा देते हैं, ऑपरेशन करा लो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर का धंधा भी चलता है उसमें। हम सोचते हैं कि ओ हमें 4 साल मिल गए, चल डॉक्टर से तो हमने ज्यादा उसमें कमा लिया, घाटे में नहीं, लेकिन साथ में घाटा ही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। हम समझते हैं कि घाटे में नहीं, लेकिन सारी जिंदगी का घाटा लेकर जाएंगे। जितनी मोहलत मिलती है इतनी कृष्ण भावना जागृत करने में काफी है। तो परीक्षित महाराज विष्णुराज भगवान विष्णु के ख्याल में ही तो इनका सारा जीवन गया, सारी चीजों में इनकी दृष्टि भगवान की बनी रही। परीक्षा करके इच्छा, इच्छा यानी कि देखना, परी यानी कि बारंबार जिनका इनको माता के गर्भ में दर्शन हुए थे इनको देखने के लिए इनका नाम परीक्षित पड़ा, तो नाम के मुताबिक इन्होंने अपना चरित्र बनाया, सही? और वो सिद्ध करके बताते हैं, सही? तो ये कोई जैसे बाहरी दृष्टि से ये मृत्यु थोपा गया, क्या विरोध करना चाहिए, अपील करनी चाहिए कि देखो मेरा कोई गुनाह नहीं है, ये जबरदस्ती से क्या? कहीं कहीं ऋषि मुनि हो गुनाह करते, मांडव्य मुनि ने बचपन में कोई वो जो क्या बोलते हैं उसे टीटी घोड़ा या छोटा सा जीव होता है उसमें एक धारदार कंटे डालकर उसको मारा था, तो ऋषि मुनि हो गए, काफी तपश्चर्या की भगवान के बारे में, लेकिन यमराज ने दंड दिया उसको शूली पर चढ़ा। तो ये मुनि ने आर्ग्यूमेंट किया यमराज से, एक विशुद्ध भक्त से आर्ग्यूमेंट किया, अरे मैंने बचपन में इतना किया था और उसकी सजा इतनी देते हो और न्यायपूर्वक नहीं है। ना समझो वो यमराज को श्राप दे देते हैं तो शूद्र जैसा है या शूद्र योनि में पैदा। तो यमराज विदुर जी बन के आए थे, सही? लेकिन यमराज ने किस ढंग से इस श्राप को लिया, क्योंकि विशुद्ध भक्त है, महाजन है,
महाजन
विशुद्ध भक्त यह ब्रह्म
धर्मराज कहलाने वाले कोई मामूली होंगे, इनकी आंतरिक भावना क्या कहीं स्थिर होगी।
तो बाह्य कला कार्यकलापों से हमें बहुत विचलित नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण पैदा होते ही पता चलता है। भगवान की शरणागति इनका स्वरूप लक्षण होता है और 26 गुण भक्त में जो खिलते हैं वो सारे तटस्थ लक्षण होते हैं। ये सारे दिव्य तभी विशुद्ध भक्त की पहचान होगी। यदि जानबूझकर या किसी न किसी कारण के अनुसार कोई बहाना लेकर ये परिस्थिति जब पैदा होती है, इतने छोटे से कर्तव्य से इतना बड़ा हमें श्राप लेना पड़ता है, तो विशुद्ध भक्त कभी विचलित नहीं होते। वो भगवान को सीधा कहते हैं कि वाह भगवान, थैंक यू वेरी मच, आपका बड़ा धन्यवाद। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाण पुञ्जानं एव कृतं विपाकम्। सुसमीक्षमाण बन जाता है शाप पाते ही, क्योंकि ये भौतिक आसक्ति से छूट पाए। भगवान आपने तो मुझे बहुत छोटा सा ही टोकन दिया है, छोटा सा टोकन के रूप में ये श्राप दे रहे हैं, लेकिन आपकी अनुकंपा अनुकंपा आपकी कृपा इसीलिए तो हृदय से वाणी से और कर्तव्य से मनसा वाचा करना तीनों द्वारा रद वाग मकुर विदधम नमस्ते भगवान को हमेशा शरणागत बने रहता है। तो जीते तो मुक्ति पदे सदा, जीते जी ही मुक्ति पा जाता है, अधिकार बन जाता है। उसके लिए कोई अन्य प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं कि वो मुक्ति के लिए अभी कुछ नहीं करे, मुक्त तो हो गया है, अब लक्ष्य कहा है? लक्ष्य भगवत प्रेम है। ये विष्णुराज भगवान के पास जाएगा, भगवान के व्यक्तित्व के साथ अपना विशुद्ध भक्त का चरित्र के रिलेशन सचमुच ये संबंध पर, संबंध में भगवान का भी बंधन होना चाहिए, अन्य कोई बंधन नहीं। हम तो एक दूसरे के बंधन में पड़ जाते हैं, अरे मैं इनको कैसे छोड़ू, ये कैसे होगा। ये बंधन संसार का बंधन है, वो टूट के बिना रहेगा नहीं, फिर बारंबार टूटे बारंबार जोड़ने की आदत पड़ गई। भगवान के साथ तभी तो संबंध नहीं बनता, भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए अन्य संबंधों की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, ये संबंधों का यथा अर्थम उपयोगित कर सकते हैं, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। प्रभुपाद जी सूरत में आए थे, बहुत सारे भक्तों को पहली बार ले आए नगर संकीर्तन, और सूरत के वासियों ने इतना भव्य आदर सत्कार किया है कि 7-7 दिन तक पंडाल प्रोग्राम में इतनी मानो मिलती है, सारे शहर में ऐसी चर्चा है कि उन्होंने कभी जिंदगी में देखा नहीं कि गोरे लोग परदेशी लोग हरि कीर्तन करते हैं। भावना तो बहुत अच्छी है। तो प्रभुपाद जी एक अपने जिनके यहाँ रहे थे, वो काफी बड़े पैसेदार थे, बड़ा परिवार था, तो उनको एक दफा बैठे थे तो भक्त भी साथ थे, तो सभी आकर उनको प्रणाम करने लगे, वो सबका परिचय देने लगा कि प्रभुपाद जी ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बेटा है, ये मेरे बेटे की बहू है, ये उसका बेटा है, और इसी तरह सारे परिवार ने करीबन 25-50 सदस्यों का परिचय करवा दिया। प्रभुपाद जी मूर्ख भक्तों कहते हैं देखो ये मुझे अपनी सेक्स लाइफ बता रहा है,
भगवत भक्ति में संबंध क्या है वो देखना है।
भगवत भक्ति में क्या
संबंध में सांसारिक बंधन नहीं होना चाहिए, संबंध में भगवान के प्रति। इसीलिए संबंध जोड़ते हो पहले यज्ञ करना पड़ता है, भगवान के संतोष के लिए काम करना पड़ता है, तब वो पता चलता है। आजकल ये यज्ञ की बात नहीं, विवाह यज्ञ कौन करता है, कोर्ट में लिखा दो या किसी न किसी तरह कर लो। अभी तो कोर्ट में लिखाने की भी आवश्यकता नहीं रही, फ्रेंडशिप में संबंध बन जाए। यानी कि कहां भाव, क्या ये भवमुक्ति कर सकेगा? भवमुक्ति के लिए तो श्राद्ध भी दिया गया है, वो भी कोई करता है क्या? भगवान का विषय हरेक पल पल में बीच में आता है, पर जानबूझकर हम द्वेषी बनकर उनका अनादर करते रहते हैं और हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहे लाख हो जाए कुछ भी हो जाए हम वैसे के वैसे पड़े रहे, नर पशु मूर्ख। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन जब तक वो भगवान का नाम के शरण नहीं लेता तब तक शुरू ही नहीं, तब तक पशु ही पशु। पशु लोग को अच्छा लगे ना लगे हमें क्या पता, हम अच्छे बुरे के लिए थोड़े, हम तो परम सत्य के उपासक होते हैं। प्रभुपाद जी के हमें इन सामाजिक रीति रिवाजों या इसमें फंसना है। प्रभुपाद जी के सत्यम वदन प्रियम वदन असत्यम अप्रियम मां वदन, ऐसे यदि सत्य बोलना है तो प्रिय हो तभी बोलना, नहीं तो कड़वा सत्य बोलने की आवश्यकता नहीं। ये सांसारिक नियम होगा, भागवत धर्म चलाने वाले के लिए नहीं है। फावड़े को फावड़ा कहना, यानी कि ये कोई ठेका लेने की आवश्यकता नहीं है, चलो सभी कहने लगो ए यूर रास्कल, नहीं नहीं ऐसी भावना। प्रभुपाद जी कहते थे कि जब मनुष्य भगवान का नाम लेने शुरू होता है तब उसका वास्तविक मनुष्य जीवन शुरू होता है। जब भगवान का नाम ही नहीं उसके अनुराग ही नहीं तो दुर्दैवम दृशम यहां जनिनानुराग, दुर्दशा ही दुर्दशा। वह मनुष्य दुर्दशा के लिए थोड़ा पैदा हुआ, जानबूझकर दुर्दशा मनुष्य योनि में ही पाना ये कम भाग्य कहना, भाग्यशाली नहीं। तो इसी तरह हमें परीक्षित महाराज ने इनके वचनों में कोई कोई आलोचना नहीं है, लेकिन परम सत्य की प्रस्तुति कर रहे हैं वो हमें समझने की आवश्यकता रहनी चाहिए। महाराज परीक्षित संसार भर के आए श्रेष्ठ अध्यात्मवादियों की उपस्थिति में इसे समझ सके है? भक्त हमेशा समझता है, और ये श्रेष्ठ अध्यात्मवादियों वहां उपस्थित क्यों हुए हैं वो भी भगवान द्वारा निर्णय समझते हैं, भगवान द्वारा प्रेषित हैं। जब विशुद्ध भक्त आते हैं तो उसमें ये भगवान का हाथ होना चाहिए, इसलिए वो भगवान का प्रतिनिधि बनकर आता है, इसलिए वो भगवान का प्रतिनिधि बनकर आता है। और सर्वप्रथम विरक्ति के आगे वो पूछ करें, बिना विरक्ति कोई युक्ति सफल नहीं हो। अतएव राजा ने महर्षियों के आगमन को परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मानकर उनका स्वागत किया। यानी कि भगवान की उपस्थिति इसी तरह समदर्शिना लिख सकते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। जो जानकार होते हैं आत्मा की उपस्थिति हर जगह व्याप्त है, तो उसके साथ साथ परमात्मा भी सब जगह व्याप्त है, तो भगवान का सरोकार मानकर ही इन लोगों के साथ व्यवहार करता है। तो जो विद्या और विनय, विद्या यानी ज्ञान, लेकिन ये भौतिक बंधनों से छुटने का ज्ञान, नहीं तो अविद्या कहलाएगा। सा विद्या या विमुक्ते, विद्या कौन होती है जो विमुक्ति देती है वो, और विनय यानी कि वैष्णव चरित्र, ये सब विनय का सूचक होता है। ये दोनों से संपन्न विशुद्ध भक्त समदर्शिन होता है, भगवान को सर्वत्र देख सकता है, आत्माओं को भी कैसे वो उलझे हैं वो भी देख सकता है, इसीलिए उसकी स्थिति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, उत्तम अधिकारी होता है। जो भगवान को भी देखता है, भक्तों को भी देखता है और अभक्तों को भी देखता है, और तीनों के प्रति समभाव बना रखता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में ये भाव की अतिशय प्रशंसा की है, जो मायावादियों को भी बहुत चुभती, तृणादपि सुनी चले, मुख में राम बगल में छुरी रखने वाले मायावादी इसीलिए ही कहलाते हैं, बाहर का विनय लेकिन भगवान के प्रति द्वेष चालू रहता है, इसलिए उनकी स्थिति ठीक नहीं। वो हमारे लिए, भक्तों के लिए, अपने संप्रदाय में काफी खतरनाक है, इन लोगों का कोई संग करना भी खतरनाक बन जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में भगवान के नाम की सराहना जिस ढंग से की है, वहीं से तो भक्ति का मूल हृदय का पता चलता है। इसीलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की, किसी को कोई प्रश्न है? ऐसे भक्त का संग करना चाहिए कि जो विरक्त हुए उनके सानिध्य में वो अपना वानप्रस्थ जीवन में वास्तविक विरक्ति की भावना को समझ सकेगा और करने का प्रयत्न करेगा। वानप्रस्थ जीवन विरक्ति के लिए तो दिया है। हम किस ढंग का संग कर रहे हैं उस पर हमारी बबन के छुटकारे की अवस्था बनी रहे। साधु संग ही एकमात्र हमें विरक्ति में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है, अन्य कोई जादू नहीं। कोई प्रश्न है? सभी विरक्त हो गए, प्रश्नों से भी विरक्त हो गए।
ठीक है,
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।